اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 32 ہے جی. اس میں یہ چیپٹر لیکچر کا عنوان ہے ایٹم کی تھیوری، اور پیج نمبر جو ہے وہ ہم پڑھیں گے 274 پہ. کل جو بات ہم نے مطالعہ کی کہ بیسیکلی دو قسم کے علوم ہیں، ایک انسان اپنی، ایک تصابی طریقہ ہے اور دوسرا ہے روحانی طریقہ. پھر آگے جو اقتصاب ہے اس میں دو طرح کے مزید ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو ہم طبعی زون میں رہتے ہوئے علم سیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اس کی تہ میں جو روحانی قوانین ہیں ہم وہاں تک پہنچتے ہیں. اور دوسرا طرز جو ہے وہ وحی کا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی براہ راست کسی نبی پہ جو علم منکشف کرتا ہے، وہ نبی کا ذہن اگر کسی بندے کو منتقل ہو جائے یا وہ ذہن سے نسبت قائم ہو جائے تو پھر وہ الہام کی طرزوں میں جو علم منتقل ہوتا ہے وہ روحانی علوم کہلاتا ہے یا روحانی طرزیں کہلاتی ہیں. تو اس ساری بات کو پڑھتے ہوئے ہم آگے پڑھ رہے ہیں کہ یہ سارا شعور کی تربیت ہے اور اس کی توانائی کے اور اس کی سکت کی کہانی ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے شعور کی تربیت کرنی ہے اور کس طرح اس میں اس کی سکت کو بڑھانا ہے. تو اس کے لیے ایک بات تو یہ کہ آپ کی اپنی ذاتی کوششیں اور کاوشیں کام کرتی ہیں، اور دوسرے نسبتیں کام کرتی ہیں. نسبت کا مطلب ہے کہ کسی نبی سے، کسی ولی اللہ سے، کسی روحانی بندے کی روح سے رابطہ قائم ہونے پہ وہ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کے ذہن کے تربیت اور توانائی، یعنی کہ لاشعور کی حدوں میں داخل ہونے کی طرزیں، ان کو امپروو کرنے میں مدد ہوتی ہے. تو اس کا پہلا پیراگراف ہم شروع کر رہے ہیں 274 پیج پہ. عام مشاہدہ ہے کہ ایک عام آدمی کے نسبت زیادہ مرتب شعور رکھنے والا انسان قرہ ارضی کے حالات سے زیادہ باخبر ہوتا ہے اور ان پر بہتر طور سے تبصرہ کر سکتا ہے. اس کی مثال اس طرح سے، لیکن ناقص شعور رکھنے والا انسان قرہ ارضی کے مسائل کو جاننے سے قاصر ہے. یعنی جس کا شعور زیادہ مرتب ہو، آرگنائزڈ ہو، وہ دنیا کے حالات سے زیادہ بہتر واقف ہوتا ہے اور بہتر طور پہ تبصرہ کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ بھی کس میں کیا پنگا ہے، کہاں پہ کیا بہتری ہو سکتی ہے، کیسے. لیکن وہ جو ناقص شعور رکھنے والا انسان ہے وہ قاصر ہی رہتا ہے. اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک 60 سالہ کسان ہے جس نے اپنی زندگی ایک محدود رقبے میں گزاری. اب اس کی علمی صلاحیتیں کھیتی باڑی سے آگے نہیں ہیں، یعنی کھیتی باڑی سے آگے نہیں بڑھیں. اب عمر اس کی 60 سال ہو گئی، وہ دادا، نانا، چاچا، تایا، برادری کا بزرگ بھی بن گیا. اس نے شعوری زندگی میں 60 سالہ زندگی کے نشیب و فراز بھی دیکھے ہیں، بے شمار تجربات بھی کیے ہیں، لیکن چونکہ اس کا علم ایٹم کے بارے میں ناقص ہے، اگر اس 60 سالہ بوڑھے کے سامنے ایٹم کی تھیوری کے بارے میں کوئی بات کی جائے گی تو وہ نہ کچھ سمجھ سکے گا نہ بتا سکے گا. لیکن اس کے برعکس کسی پڑھے لکھے آدمی کے سامنے جس نے ایک تصابی علوم حاصل کر کے اپنے شعور کو توانا کر لیا، اب اس کے سامنے ایٹم کی تھیوری بیان کی جائے تو اسے ایٹم کی تھیوری سمجھنے میں کوئی زیادہ دقت اور پریشانی نہیں ہوگی. اب انسان ان جرنل और खसूसन रूहानी इंसान, खास तौर पे जो रूहानियत जानता है या रूह से वाकिफ इंसान है, वो रूहानी इंसान वो चार शऊरों से वाकफियत रखता है। अब एक शऊर वो है जिसको हम खारजी दुनिया कहते हैं, यानी जिस शऊर से हम खारिज को देखते हैं, खारिज को समझते हैं और खारजी एहसासात से मुतासर होकर जिंदगी गुजारते हैं। ये ऐसा शऊर है जिससे नौ इंसानी का हर फर्द कमोबेश वाकिफ है। अब इसको पहला शऊर कहा जाता है। जब हम दूसरे शऊर यानी लाशऊर का तस्करा करते हैं तो कहते हैं कि शऊर को जिस जगह से इत्तलात फराहम होती है, शऊर उन इत्तलात में मानी पहनाकर इमेज बनाता है। क्या बनाता है? इमेज, यानी एक तस्वीर बनाता है। जहां से इत्तलात आ रही है वो लाशऊर है, उस लाशऊर से आमा तो नास वाकिफ नहीं है। अलबत्ता वो लोग जो गौर व फिक्र करते हैं, तहकीक को तलाश के मैदान में सरगर्दां रहते हैं, वो उससे वाकिफ हो जाते हैं। यानी जो लोग गौर व फिक्र करते हैं और तहकीक और तलाश यानी जस्तुजू उनके अंदर होती है और वो कोशिश करते हैं दरियाफ्त करने की, तो वो इस लाशऊर से वाकिफ हो जाते हैं। अब लाशऊर से वाकफियत के नतीजे में नित नए अलूम सामने आते रहते हैं, इख्तरात और इजादात का सिलसिला कायम होता है। यही वो शऊर है जिसके जरिए साइंसी तरक्की हम तक पहुंची है। अब इन दो शऊरों के अलावा दो शऊर और हैं। तीसरा और चौथा शऊर जो है ये उन लोगों के अंदर मुतहरक होता है जिन लोगों को हम नबी या वली के नाम से जानते हैं। अब आप देखिए ना कि साइंस से मरऊब जहन को ये अंदाजा ही नहीं है कि ये सिर्फ दूसरे शऊर से यानी शऊर के दूसरे दर्जे से वाकफियत पे कितनी अकड़ है कि जी मैं साइंस जानता हूं, और रूहानी बंदा कहता है जी माशाल्लाह क्या बात है आपकी। लेकिन इसका मतलब ये कि रूहानी बंदा किसी भी साइंसदान के शऊर से ज्यादा बेहतर और मुरतब शऊर रखता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने और खालिक के माबैन कनेक्शन का भी पता है और उसे यह भी पता है कि वो किस तरह अपनी मखलूक से काम ले रहे हैं। अब तीसरा और चौथा शऊर उन लोगों के अंदर मुतहरक होता है जिन लोगों को हम नबी या वली के नाम से जानते हैं। तो कानून यह है कि कायनात में फैली हुई रोशनी के अंदर, कायनात में जो रोशनी फैली हुई है उसके अंदर कोई तब्दीली वाकया होती है, तो ये तब्दीली इन चारों शऊरों में भी होती है। ये कानून है, यानी अगर रोशनी में तब्दीली हो जाए तो उसके जेरे असर ये चारों दर्जे के शऊर जो हैं वो उस तब्दीली को महसूस करते हैं या वो तब्दीली की जद में आकर बदल जाते हैं। कायनात में फैली हुई यही रोशनी कायनात और कायनात के अफराद के दरमियान जान पहचान का जरिया। अगर ये रोशनी कायनात या अफराद कायनात के दरमियान से निकाल दी जाए तो एक शऊर और तीन लाशऊर की हैसियत सिफर के बराबर हो जाएगी। यानी अगर बीच में से ये लाइट जो है ये गायब हो जाए तो आप और मैं, ये जो मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने ये किताब से जो अल्फाज देख रहा हूँ, ये हरूफ जो पढ़ रहा हूँ, ये जो आवाज निकल रही है मेरी, ये सब रोशनी की लहरें हैं। आपके कान में ये आवाज करंट में मुंतकिल होकर सिग्नल्स की सूरत में वहां तक पहुंच रही है जहां जहां भी आप हैं, तो ये सब रोशनी ही की लहरें हैं असल में। कायनात में फैली हुई यही रोशनी कायनात और कायनात के अफराद, यानी अफराद के आपस में और अफराद के कायनात से दरमियान ताल्लुक का जरिया और जान पहचान का जरिया है। अगर ये रोशनी कायनात के या कायनात के अफराद के दरमियान से निकाल दी जाए तो एक शऊर और तीन लाशऊर की हैसियत सिफर के बराबर हो जाएगी, और अगर तीनों लाशऊरों में तब्दीली वाकया हो जाए, तीनों लाशऊरों में तब्दीली वाकया हो जाए तो शऊरी हद व ख़ाल भी तब्दील हो जाते हैं। अब ये शऊर में तब्दीली या रोशनियों में रद्दो बदल का ताल्लुक रोशनी के मुख्तलिफ जावियों से, अब ये वो पूरी साइंस बताई जा रही है कि किस तरह हम अपने इनर की रोशनियों में तब्दीली पैदा करेंगे तो खारजी दुनिया की रोशनियों में तब्दीली वाकया हो जाएगी। अब इसकी एक मिसाल ये है कि बाज़ लोग जो अपने पीर मुर्शद से बहुत ज़्यादा कुर्बत और नस्बत रखते हैं वो पीर मुर्शद की शख्सियत को इस दर्जे अपना लेते हैं कि उनके शऊर में एक तब्दीली वाकया हो जाती है, उसके नतीजे में उनके खदो खाल अपने मुर्शद जैसे होना शुरू हो जाते हैं। यानी उनके आप उनको देखें तो उनकी शक्लो शबाहत में उनके मुर्शद की झलक दिखती है, यहां तक होता है कि उनकी बात करने के अंदाज में अपने मुर्शद की वो जो आवाज की लहरें हैं वो महसूस होती हैं। ये डिपेंड करता है, ये सारा क्या हुआ वो अंदर की रोशनियों में तब्दीली हो गई। शऊर में तब्दीली या रोशनियों में रद्दो बदल का ताल्लुक रोशनी के मुख्तलिफ जावियों से। अब रोशनी नस्मा है, अब नस्मा ऐसे ताने बाने का नाम है या ऐसी रोशनी की लकीरों का नाम है जो एक दूसरे के साथ पैवस्त भी नहीं है और एक दूसरे से फासले पर भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये रोशन लकीरें अपने जाविये बदलती रहती हैं। यानी ये बात एक कानून के तौर पे समझ लें कि ये सारा निजाम रोशनियों पे कायम है, अफराद और कायनात के दरमियान और अफराद का आपस में अफराद के साथ ताल्लुक ये सब इन्हीं रोशनियों पर कायम है, और इनकी जरा रेंज को मैंने वसी करके अर्ज कर दिया कि आवाज की लहरें या ये सामने जो मादी मरई रोशनी है और फिर सो मच सो के ख्याल की लहरें भी रोशनी ही कहलाती है। यानी ये तब्दीली जो है ये रोशनियों की तब्दीली यानी ये शऊर में तब्दीली का सबब बनती है। देखे ना आप एक इसकी मिसाल देखें, आपने अक्सर देखा होगा कि एक बंदा दौलत को बहुत चाहता है, दौलत की जरूरत और अहमियत उसके आसाब पे बहुत ज्यादा सवार है, लेकिन कोई वाक्य ऐसा होता है जिसमें उसको अंदाजा हो जाता है कि भी दौलत की वजह से मैं खुशी नहीं खरीद सकता, मैं सेहत नहीं खरीद सकता। अब उसके ये बात ऐसे तजर्बे में आती है, उसका जहन का जाविया ऐसा बदल जाता है, उसके जहन में ऐसी तब्दीली पैदा होती है कि वो उसे दौलत की बेसबाती जो है उस पर खुल जाती है। तो ये तब्दीली उसके जहन में आने से उसके पूरे अमाल और अफाल में फर्क पड़ना शुरू हो गया। ये कैसे हुआ कि अंदर उसके रोशनियों में तब्दीली पैदा हो गई, जिस चीज को वो अहमियत देता था वो अहमियत देना कम कर दिया, इसको जाविया बदलना कह रहे हैं। अब ये कि ख्याल कहां से आता है, ये जो ख्याल का आना है इसको समझ लें तो सारी गुत्थी हल हो जाएगी। मुख्तलिफ जावियों और नई नई मिसालों से آپ خواتینوں حضرات کے گوش گزار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق چار شعوروں یعنی ایک شعور اور تین لاشعوروں سے کی ہے. ہم جب اوپر سے نیچے کی طرف کائنات کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہیں تو چوتھے لاشعور سے ہماری مراد شعور اول ہے، یعنی اس کا نام شعور اول رکھا گیا ہے. اسماعیل آہیا جب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفت میں ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے. اسماعیل الہیہ جب خود کو اپنے منصوبہ صفت کے اظہار کی طرف ملان کرتے ہیں، مائل ہوتے ہیں، ان میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور ان کے اندر پھر احکام کا رنگ غالب ہو جاتا ہے. احکام کا مطلب کہ وہ صفت جو ہے وہ فکر بن جاتی ہے اور وہ ایک چیز لاگو ہونے لگتی ہے. تو احکام کا رنگ غالب ہونا تصوف میں بدعت کہلاتا ہے. اب یہ بدعت نہیں ہے لفظ، بدعت، بدعت کہتے ہیں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا. بدعت کا مطلب ہے کسی چیز کا نئے سرے سے اگنا، جرمینیشن، یعنی کوئی چیز جیسے بیج میں سے پودا باہر کو نکلنے لگتا ہے تو اس جرمینیشن کے پروسیس کو بدعت کہتے ہیں تصوف میں. جب بدعت یعنی کہ وہ جو کوئی طاقت ہے جو اندر سے اس کو باہر کی طرف ڈسپلے پہ راغب کر رہی ہے اسے بدعت کہتے ہیں. جب بدعت اول شعور سے دوم شعور میں منتقل ہوتی ہے تو امر الہیہ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. یہ چار شعور واضح ہو گیا. پہلے شعور کو شعور اول میں سے اسماء الہیہ، اب دیکھیں نا، شعور اور چیز ہو گیا، اسماء الہیہ اور ہو گیا. اسماء الہیہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں صفات کو، شعور اول سے ان کی شروعات ہوتی ہے، یعنی شعور کو پتہ ہے کہ میں اسماء الہیہ سے ڈیل کر رہا ہوں، یعنی وہ صفات کو جانتا ہے. وہ صفات میں ایک بدعت یعنی ایک جرمینیٹنگ فورس ہے جو اس کو اپنے اظہار پہ راغب کر رہی ہے. تو جب یہ ایک درجہ آگے بڑھ جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں دوم شعور میں منتقل ہونا، یعنی شعور اول سے یا نہر تسوید سے وہ نہر تجرید میں آ گیا. تو یہ یا یوں کہیے کہ وہ وہمہ سے خیال بننا شروع ہو گیا اور اسی کو امر الہیہ کہا. امر کہتے ہیں کام کو، کہ اب اللہ کیا کام چاہتا ہے. ہم نے اللہ کا امر کا ترجمہ حکم کیا ہوا، ذرا اس سے باز آ جائیں. کائنات ساری کی ساری اللہ کی صفات پر قائم ہے. اب صفات اللہ کے احکام کے ذریعے مظہر بنتی ہیں. کائنات اللہ کی صفات پر قائم ہے اور صفات جو ہیں یہ مظہر خود بخود نہیں بن جاتی، ان کے پیچھے اللہ کے احکامات کام کر رہے ہیں، یعنی اللہ کا ارادہ کام کر رہا ہے، یعنی اللہ کی فکر کام کر رہی ہے، اللہ کی مرضی کام کر رہی ہے. ورنہ صفات خود اپنے آپ کو نہیں ڈسپلے پہ لا سکتی یا ڈیمونسٹریٹ نہیں کر سکتی. تو صفات اللہ کے احکام کے ذریعے مظہر بنتی ہیں اور یہ سلسلہ ازل سے قائم ہے اور ابد تک جاری رہے گا. صفات کے اندر جب حرکت پیدا ہوتی ہے تو خد و خال اور شکل و صورتیں رونما ہوتی ہیں. اب ذرا سا غور کریں، یاد ہے صفات پہ میں نے بڑی وضاحت سے عرض کیا کہ صفات اصل میں کس کو کہتے ہیں، صفت کسے کہتے ہیں؟ بھئی جتنے آپ کی زبان میں ایڈجیکٹیوز ہیں یہ سارے صفات ہیں. اس میں صفت کیسے ہیں نا، اس کو ویسے بھی تو آپ گرامر میں، تو اس طرف ذہن نہیں جاتا، پتہ نہیں اچھا ہوگا کچھ نہیں. بھئی ہر एडजेक्टिव जो है वो असल में लकी सिफत। तो सिफात के अंदर जब हरकत पैदा होती है तो खदोखाल और शक्ल सूरतें रुनुमा होती हैं। अब ये खदोखाल और सूरतें तीन मराहिल से गुजर कर मादी शक्ल सूरत में जाहिर होती हैं, तीन मराहिल से गुजर कर मादी शक्ल सूरत में जाहिर होती हैं। अब एक बात अल्लाह ने कैसे उसको डिस्प्ले करना चाहा, दूसरा ये कि वो चीजें किस तरह मराहिल से गुजर कर मादी शक्ल सूरत में डिमॉन्स्ट्रेट की हो रही हैं या डिस्प्ले हो रही हैं। ये खदोखाल और सूरतें तीन मराहिल से गुजर कर मादी शक्ल सूरत में जाहिर होती हैं। अब कायनात की एक सूरत यह है कि अल्लाह ने जिस तरह कायनात को बनाया तो कायनात बहैसियत मजमूई एक जगह पर कायम है, और कायनात बहैसियत मजमूई इस तरह मौजूद है कि कायनात में मौजूद हर जर्रा मौजूद भी है और हर जर्रा दूसरे जर्रे में पैवस्त भी है। मसलन अब ये बड़ा अजीब नुक्ता है, इसको जरा समझें। जब हम कायनात की इज्तमाई हैसियत को देखते हैं तो नजर आता है कि एक शक्ल सूरत के अंदर पूरी कायनात जलवा गर है, नबातात हैवानात जमादात हैवानात इजराम समावी सब एक दूसरे के अंदर गडमड हैं। यानी आप यूं समझें कि बहुत ही बड़े कागज पे आप एक बड़ा सा जानवर बनाते हैं, फर्ज करें डायनासोर है, उसके अंदर एक आप हाथी बनाते हैं, हाथी के अंदर आप एक मगरमच्छ बनाते हैं, उसके अंदर एक शेर बनाते हैं, उसके अंदर एक व्हेल मतलब व्हेल मछली से ऊपर बना लें, तो इस तरह करते कराते छोटा 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 वो करते कराते आप माइक्रोब्स तक आ जाते हैं। अब असल में क्या है कि ये सारा कायनाती प्रोग्राम एक नुक्ते में बंद है। अब वहां से जब इसका डिस्प्ले होता है तो ये चीजें फैलती चली जाती हैं और बिखरती हैं, दरमियान में फासले पैदा होते हैं, तो हर चीज अलग अलग यानी अपनी इनफरादी सतह पर आकर डिस्प्ले बनती है। अब एक रूहानी बंदे की नजर में इतनी सकत होती है, ताकत होती है कि वो उस नुक्ते को फैले हुए नुक्ते को समेट के देखना सीख लेता है, सिमटा हुआ देख लेता है, वो पूरी कायनात को एक नुक्ते की तरह देखता है और फिर एक नुक्ते में पूरी कायनात को देखता है। ये हैं दो एंगल, इनकी वजाहत हो रही है यहां पे, और यही बात हजूर मुर्शिद करीम ने बहुत ही आहिस्तगी से आसान से अल्फाज में बता दी कि ये सारा मराहिल जो चारों मरहले हैं ये गुजर के फैलते हैं तो कायनात बन जाती है, सुकड़ते हैं तो वो एक नुक्ता बन जाती है। ये कल किसी ने वो एक पिक्चर शेयर की थी जो मुराकबा हॉल में वो तस्वीर बनती है ना आस्थाने के सामने दीवार पे, तो उसमें भी यही था कि नुक्ते का फैलाव, एक तरह से वो नुक्ता जो है वो वही वाहमा ख्याल तसव्वुर और एहसास और उसके बाद वो सब कुछ दिखाया गया था उसमें। वो हमने ग्रुप में भी शेयर की थी कि ताकि आपकी तवज्जो इस नुक्ते पे रहे कि किस तरह एक ही नुक्ता है वो फैलता है तो कायनात बन जाती है, पूरी फैली हुई कायनात को समअप कर दें, समरी कर दें, उसकी प्रेसी कर दें तो वापस उस नुक्ते तक पहुंच जाएंगे। तो ये है सारा रोल, कायनात को बनाया, कायनात की मजमू इस तरह कि एक दूसरे में ये पैवस्त है, एक दूसरे में पैवस्त होना। कायनात एक ऐसा आलम है जहां हर नौ दूसरी नौ के अंदर नजर आती है और ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। ऐसा क्यों है? क्योंकि कायनात एक इल्म है, इल्म के अंदर इल्म, इल्म के अंदर इल्म। इल्म अगर नहीं है तो कायनात नहीं है। तो इल्म अल्लाह की सिफात है, यानी इस्मा इलाहिया है। यहां तक ये बात वाजे हो गई। अब आगे देखें, अब ये चार शऊरों को मुख्तलिफ नामों से कैसे समझाया जा रहा है। शऊर अव्वल नूरे मुफरद है। मुफरद कहते हैं सिंगुलैरिटी को। शऊर दोम ये नूरे मुरक्कब है। अब ये नूरे मुरक्कब यानी कंपाउंड, और शौर सोम जो है ये नस्म मुफरद है, और शौर चहारम ये नस्म मुरक्कब है। यानी चौथा शौर जो है ये नस्मा का ताना बाना है, कंपाउंड है, ताना भी है इसमें बाना भी है। अब नूरे मुफरद की तखलीक, नूरे मुफरद की तखलीक मलायाला और नूरे मुरक्कब की तखलीक मलायका है। नस्म मुफरद की तखलीक जिन्नात हैं और नस्म मुरक्कब की तखलीक ही अंसरी मखलूक है जिसमें हजरत इंसान भी शामिल है, और अंसरी तखलीक में हमारे जमीन का कुर्रा भी शामिल है। अब इसी बात को दोबारा लिख दिया कि भाई शऊर अव्वल जो है ये नूर मुफरद है, शऊर दोयम जो है नूर मुरक्कब है, और शऊर सोयम जो है ये नस्म मुफरद है, और ये चौथा शऊर जो है इसे नस्म मुरक्कब कहते हैं। नूर मुफरद से बनने वाली तखलीकात का नाम मलाय आला है, फिर नूर मुरक्कब मलाइका है, नस्म मुफरद से जिन्नात बनते हैं, और नस्म मुरक्कब से इंसान हैवान नबातात और जमादात बनते हैं। हैविंग सेड ऑल दिस, अब अगला बात समझ लीजिए कि जिंदगी ख्यालात की रॉ का दूसरा नाम है, यानी फ्लो ऑफ थॉट्स। लाइफ इज नथिंग बट अनदर नेम ऑफ द फ्लो ऑफ थॉट्स। ख्यालात की रॉ का दूसरा नाम है जिंदगी। क्या है? ख्यालात की रॉ का दूसरा नाम है। अब देखें आप और हम जिंदगी की कितनी डेफिनेशन करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये जुमला आपने इससे पेशतर कभी नहीं पढ़ा होगा कि महज ख्यालात आना जो है और उसकी एक रौ के बहाव का कायम रहना जिंदगी है। अगर ख्यालात का सिलसिला मुनकता हो जाए तो तमाम तकाजे, तमाम हवास खत्म हो जाएंगे। जमीन की हरकत, कोई काम और कोई तकाजा ऐसा नहीं है जो ख्यालात के दायरे से बाहर हो। कोई भी काम करने से पहले उस काम से मुतालिक ख्याल आता है। जब तक ख्याल ना आए और गहराई पैदा ना हो तो कोई चीज मजर नहीं बनती। ख्याल से पहले एक कैफियत ऐसी होती है जिसका दबाव जहन पर पड़ता है। इसी ख्याली कैफियत की बुनियाद पर आदमी ख्याल में मानी पहनाता है। लेकिन ख्याल से पहले एक और कैफियत होती है जिसका दबाव जहन पर नहीं पड़ता, लेकिन जहन के ऊपर एक हल्की सी शबीह जरूर बन जाती है। ख्याल की इस लतीफ कैफियत को वहम कहते हैं, इसी को वहमा। वहम चूंकि एक बीमारी का नाम भी है इसलिए अक्सर हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, लफ्ज वहम, वहमा कहते हैं। ख्याल की ये लतीफ कैफियत जब गहराई अख्तियार करती है तो वहमे से गुजरकर ख्याल बन जाती है। यानी ख्याल वो वाहमा जो है वो एक इत्तला है, इत्तलात की तरसील का निजाम है। ये बात समझ ली गई है कि जिंदगी से ख्याल से जिंदगी में तकाजे बनते हैं, यानी ये अज्यूम किया जा रहा है कि ये बात आपकी मेरी समझ में आ गई है, हमें ये बात गोया समझ में आ चुकी। क्या के ख्याल से जिंदगी में तकाजे बनते हैं, लेकिन ये बात अभी गौर तलब है कि ख्याल कहाँ से आता है, यानी अभी ये बात तय नहीं हुई कि ख्याल आता कहाँ से। लोहे महफूज पर नकूश नजूल करने के बाद रोशनी की लहरों में मुंतकिल होते हैं, तो ये रोशनी जहन से टकरा कर बिखर जाती है। लहरों और लकीरों का नजूल जहन इंसानी पर ना टकराए तो इंसान वहमा और ख्याल से वाकिफ नहीं होता, और जब तक वहमा और ख्याल से वाकफियत ना हो तकाजे पैदा नहीं होते। हम शबो रोज ख्यालात में घिरे रहते हैं, कुछ ख्यालात ऐसे होते हैं जिनको हम जिंदगी से वाबस्ता समझते हैं, और बेशुमार ख्यालात ऐसे होते हैं जिनको हम अहमियत नहीं देते और नजरअंदाज कर देते हैं। ये है सारा राज। क्या कि जब ये लोहे महफूज के नकूश नजूल करते हैं तो रोशनी की लहरों में मुंतकिल होते हैं, और ये रोशनी जब जहन से टकरा कर बिखरती है तो जहन वहमा और ख्याल से वाकिफ होते हैं, और जब ये वहमा और ख्याल जहन से टकरा के बिखरते हैं तो हमारे अंदर तकाजे पैदा होते हैं। ये तकाजे जो हैं ये है सारा निजाम। ये जो बात अर्ज की जा रही है कि ख्याल कहाँ से आता है, ख्याल आता है लोहे महफूज से बने हुए जो नक्शो निगार हैं, जब वो वहां से नशर होते हैं तो हमारे जहन की हदों में दाखिल हो जाते हैं। ये जो ख्याल जिसको हम ख्याल कहते हैं, ये असल में लोहे महफूज से आने वाली तलाश ये नशरिये का नाम है, और फिर उसके नतीजे में ये तकाजे जन्म लेते हैं, ख्वाहिशें बनती हैं। अगर हम इन चीजों की दुरुस्त तफहीम कर लें, समझ लें, तो जाहिर है कि किसका भला करेंगे, हम इनको बेहतर तौर पे इस्तेमाल करना सीख लेंगे, यानी अपने ख्यालात से आगाह होके हम ख्यालात को कंट्रोल करना भी सीख लेंगे, यानी उन नकूश को जो लोहे महफूज के नकूश हैं उनको अच्छी तरह समझ सकेंगे, फिर उनके मुताबिक अमल कर सकेंगे। क्योंकि ये इंसान को इख्तियार दिया गया है कि वो लोहे महफूज के नकूश में तब्दीली कर सकता है, तभी तो ये लोहे दोयम का जिक्र आया था। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी थिंकिंग को अलाइन कर दें, सिंक्रोनाइज कर लें अल्लाह के साथ। तो आगे ये है कि कानून ये है कि कोई भी ख्याल जहन पे वारिद होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस ख्याल का ताल्लुक कायनात के किसी न किसी शोबे से ज़रूर है। ख्याल का आना बजाय खुद इसकी दलील है कि ख्याल कहीं से आया। यानी ये जुमला कहना कि मुझे ख्याल आया, तो भाई ये लफ्ज़ कह रहे हैं ना मुझे ख्याल आया, आया कहाँ से आया? गौर नहीं करते कि भी आया तो कहाँ से आया, और अगर आया तो क्यों आया, ठीक है ना। तो ये इस बात की दलील है कि ख्याल कहीं से आया, ये ख्याल इंसानी जहन पर टकराया तो जहन में हरकत पैदा हुई। अब ऐसी हरकत जिस हरकत के बारे में हम कोई हतमी राय नहीं कायम कर सकते, लेकिन बहरहाल जहन के पर्दों में हरकत वाक्या होती है। यानी ख्याल के नतीजे में जहन के पर्दे हिलते हैं, क्योंकि हम उस हरकत को महसूस नहीं करते या हरकत में मानी नहीं पहना सकते, इसलिए हम उसे कोई अहमियत नहीं देते। लेकिन इस हरकत का ताल्लुक कायनात के उन तारों या लहरों से है जो कायनात के निजाम को एक खास तरतीब और तदवीन के साथ कायम रखे हुए। तरतीब अरेंजमेंट यानी बारी बारी, ये नहीं कि पहले बचपन की तस्वीरें आ जाएं तो फिर एकदम बुढ़ापे की आ जाएं, ये तरतीब के साथ चलेगा। बचपन से लड़कपन, लड़कपन से नौजवानी, नौजवानी से जवानी, फिर बुढ़ापा। तो ये एक तरतीब है, तदवीन यानी कि उसकी ड्यूरेशन वगैरह ये सारा कुछ उसमें आ जाता है। तो हम इस बात से आशना है कि हवा चलती रहती है, हवा की तेजी, कमी, खुनकी या गर्मी से भी हम मुतारिफ हैं। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कि हवा मामूल के बरक्स तेज झोंकों में मुंतकिल हो जाती है। अब ये अमल यानी तेज झोंकों में मुंतकिल होना चूंकि रूटीन के खिलाफ हरकत, रूटीन की हरकत के खिलाफ है, तो लाजिमन ये सोचना पड़ेगा कि जिस निज़ाम में हवा बनती है, जिस निज़ाम से हवा चलकर ज़मीन में फैलती है, उस निज़ाम में तगैर वाक़िया हुआ है। इसी तरह जब इंसान के जहन में कोई हरकत वाक़िया होती है या कोई ख्याल वारिद होता है तो उसके मानी ये होते हैं कि इंसान के लाशऊर में हरकत वाक़िया हुई है। कहां हरकत वाक़िया हुई है, उस हरकत का किस निजाम से ताल्लुक है, ये इंसान की खुद अपनी तलाश पर मुनहसर है। इन आदमी जिस कदर गहराई में तफक्कुर करने के बाद अपने लाशऊर से वाकफियत हासिल कर लेता है, उसी मुनासबत से उसकी तलाश आसान हो जाती है। यानी उसे ये अंदाजा हो जाता है कि ये शऊर के कौन से दर्जे पे झक्कड़ चल रहे हैं या तब्दीली आ रही है। तो आलमीन में कोई शय दो रुखों के बगैर नहीं। मरई अशिया में हमें खदोखाल नजर आते हैं, लेकिन हम ये भी तो जानते हैं कि किसी हस्ती ने उसको संभाला हुआ है। अब एक रुख गालिब है, दूसरा रुख मख्फी है। दोनों रुख मिलकर जिंदगी बनते हैं और जिंदगी ही एहसास है। अब ये जो ख्यालात का बहाव है, इसका अंजाम क्या है, एहसास। तो जिंदगी क्या हुई, जिंदगी ही एहसास है। अब ये एहसास या हिस के भी दो मरातब हो गए, एक शेर सामने है और दूसरी जो उसका मुशाहिदा कर रही है। जो शेर मुशाहिदा करने वाली है वो मख्फी है। आप देखें ना, एक चीज आपके सामने है, आपकी किताब हमारे सामने है, लेकिन इसको मुशाहिदा कौन कर रहा है, तो वो मैं कर रहा हूं, तो मैं कौन है? वो जी मेरी बसारत कर रही, तो बसारत क्या है, वो छुपी हुई है, वो बख्फी है। अब एक रुख वहां है जहां मुशाहिदा करने वाली कुवत मौजूद है, ये कुव्वत किसी चीज को देखती और महसूस करती है, और दूसरा रुख वहां है जहां मुशाहिदा करने वाली कुव्वत की निगाह पड़ती है। जब तक हिस के दोनों रुख यकजा ना हो उस वक्त तक हम किसी चीज को देख नहीं सकते। यानी ये दोनों रुख किसी एक नुक्ते पर मुज्तमा होंगे, एक जगह इकट्ठे होंगे, तब हमारे सामने वो चीज को देख सकते हैं। कोई मौजूद हमारे सामने है, यानी कोई वजूद हमारे सामने है, लेकिन इस वजूद को संभालने वाला हमारे सामने नहीं है। अब मादी चीज यानी मरईश है गोश्त पोस्त की आंख से नजर आती है, और गैर मरई चीज गोश्त पोस्त की आंख से नजर नहीं आती लेकिन रूहानी आंख से देखती है। अब जब हम स्याह तख्ते को देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी आंखों के सामने तख्ता है, लेकिन जब हम स्याह रंग पर तफक्कुर करते हैं तो हमें पता चलता है कि रंग अलग है, तख्ता अलग है। यानी हम रंग और तख्ते के मिलाप को तख्ता स्याह कहते हैं। यहां तक ये माशाल्लाह आपका ये चैप्टर एटमी थ्योरी जो है ये पूरी हो गया, मतलब मुकम्मल हो गई थ्योरी, एटम की थ्योरी वाला ये लेक्चर मुकम्मल हो गया।